रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम प्रस्तुत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के आरंभ में आप सूरह फुसिलत की 30वीं से लेकर 33वीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं अब्बास इमाम जुमा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکاکل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتینت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، سبھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج شکروار ہے، نومبر کی 17، جمادی الاول کی 3 اور آبان ماہ کی 26 تاریخ۔ کارکرموں کی روپ ریکھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کارکرموں کا آرمبھ ہم وشو سماچاروں سے کریں گے۔ وشو سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم آپ سنیں گے، اس کے اپرانت آپ کا اپنا من پسند کارکرم پیش کیا جائے گا پتر سنسار۔ सभा के अंत में हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। अबू तराबी फर्द ने ज़ायोनी शासन को संकट पैदा करने वाला बताया है। जनरल इस्माइल कनानी ने कहा है कि हमास ने अलक्सा ऑपरेशन अंजाम देकर बड़ा कारनामा किया है। गजा में इंडोनेशियाई अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अशफा अस्पताल में सुरंग का कोई भी सबूत नहीं मिला। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। तेहरान के इमाम जुमनमा ने ज़ायोनी शासन को संकटों की जननी बताया है। हुज्जतुल इस्लाम अबू तराबी फर्द का कहना है कि अवैध ज़ायोनी शासन न केवल मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में संकट उत्पन्न करने का कारण है। सैयद मोहम्मद हसन अबू तराबी फर्द ने गजा को इस्लाम और फिलिस्तीन का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से ये अवैध शासन फिलिस्तीनी क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों की हत्याएं कर रहा है, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं। उसने बलपूर्वक फिलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। तेहरान के इमाम जुमा के अनुसार ये सब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के खुले समर्थन के कारण संभव हुआ है। आज भी अमेरिका उसी का समर्थन कर रहा है। ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC की कुछ फोर्स के कमांडर ने अपने एक महत्वपूर्ण संदेश में कहा है कि फिलिस्तीनियों ने यह साबित कर दिया है कि अवैध ज़ायोनी शासन मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने फिलिस्तीन के इस्लामी आंदोलन हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के कमान को एक संदेश में लिखा है कि उन्होंने अलक्सा तूफान अभियान अंजाम देकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इससे अवैध ज़ायोनी शासन की कमजोरी साफ उजागर हो गई है और यह साबित हो गया है कि उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री आज सुबह तेहरान वापस लौट आए। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मानवाधिकार संगठनों, मानवीय सहायता संगठनों और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के वरिष्ठ अधिकारियों, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं से गजा के मामले में बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरे के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष से भी मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों और बैठकों में ईरानी विदेश मंत्री ने ज़ायोनी शासन के बर्बर हमलों, गजा और वेस्ट बैंक के निवासियों, नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। ईरान में फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के प्रतिनिधि ने तेहरान के मेयर द्वारा फिलिस्तीन के बेघर लोगों के समर्थन में अपनाई गई नीति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि गजा को मानवीय सहायता की जरूरत है। खालिद कदूमी ने गुरुवार को राजधानी के प्रबंधकों के एक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस मौके पर सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गजा में अवैध आतंकी इसराइली शासन के साथ जारी युद्ध को 41 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में इसराइल के पाशविक हमलों में गजा के पुरुष, महिलाएं और खासकर बच्चे शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का हत्यारा इसराइली शासन अपने अवैध अस्तित्व की स्थापना से लेकर अब तक 75 वर्षों से लगातार फिलिस्तीनी जनता पर अत्याचार करता आ रहा है, लेकिन प्रतिरोध के जियालों द्वारा अलक्सा तूफान नामक एक ऑपरेशन ने उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इसराइली सेना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अपील, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव आदि को मानने को तैयार नहीं है। लगातार वो मानवाधिकारों को अपने पैरों तले रौंद रही है। इसी बीच गजा से मिलने वाली जानकारी के अनुसार यहां पर इंडोनेशियाई अस्पताल की सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। दूसरी ओर अल अहली अस्पताल की आतंकी ज़ायोनी सेना ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। गजा के अस्पतालों पर अवैध आतंकी ज़ायोनी शासन का आक्रमण जारी है। इंडोनेशियाई अस्पताल में काम पूरी तरह से रुक गया है, जबकि अल अहली अस्पताल को घेर लिया गया है। इंडोनेशिया अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर आतिफ अदवान ने बताया है कि अस्पताल में काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक अमरीकी चैनल का कहना है कि अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नीचे सुरंग नेटवर्क होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अलशिफा चिकित्सा परिसर में हमास द्वारा बनाई गई सुरंगों के होने के बहाने अवैध आतंकी इसराइली शासन ने अस्पताल को एक सैन्य बैरक में बदल दिया है। वह उस पर बर्बरतापूर्ण जमीनी और हवाई हमले जारी रखे हुए है। अमरीकी चैनल CNN ने गुरुवार को बताया कि अलशिफा अस्पताल के नीचे इसराइली सेना द्वारा सुरंगों के नेटवर्क की खोज का कोई सबूत नहीं मिला है। CNN ने बताया कि लगभग 3 सप्ताह पहले इसराइली सैन्य प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि अलशिफा अस्पताल में हमास के सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि गलत सिद्ध हुआ। गजा युद्ध रुकवाने का समर्थन करने वालों की अमेरिका में धरपकड़ तेज हो गई है। अमेरिका की पुलिस ने उन दसियों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है जो गजा युद्ध रुकवाने की मांग कर रहे थे। गार्डियन समाचार पत्र के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सैन फ्रांसिस्को पुल के एक हिस्से को रोककर लिया था और वहां पर वे प्रदर्शन कर रहे थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया जो विश्व नेताओं से गजा युद्ध को रुकवाने की मांग कर रहे थे। गजा वासियों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले अपने हाथों में बैनर लिखे हुए थे जिन पर लिखा था कि जातीय सफाई को बंद किया जाए। दावा यह किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने मानव जंजीर बनाकर वाहनों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। रिपोर्टों में बताया गया है कि जिस मार्ग को फिलिस्तीनियों के समर्थक प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध किया उस पर प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में वाहन गुजरा करते हैं। ज्ञात रहे कि अमेरिका में इस प्रदर्शन के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के विभिन्न नगरों में इसराइल के अत्याचारों के विरुद्ध और फिलिस्तीनियों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस प्रकार के सारे ही प्रदर्शनों में गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की जा रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही अवैध ज़ायोनी शासन गजा पर अपने हमले जारी रखे हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। नेटो के महासचिव ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यूक्रेन युद्ध अपेक्षा से अधिक कठिन सिद्ध हुआ है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव के अनुसार पश्चिम के खुले समर्थन से यूक्रेन युद्ध जारी है, किंतु हालात से पश्चिम अब इसमें बहुत बेबस दिखाई देने लगा है। नाटो के महासचिव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि यूक्रेन युद्ध की जमीनी हकीकत बहुत ही जटिल हो चुकी है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं गजा युद्ध से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने संबंधों के विस्तार पर दिया बल और भारत नियंत्रित कश्मीर में झड़पें। तो सबसे पहले गजा युद्ध से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। ईरान का मानना है कि मानवाधिकारों के मुद्दे को राजनीतिक लक्ष्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने तथाकथित मानवाधिकारों के बारे में कनाडा के प्रस्ताव की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान की प्रतिनिधि ने राजनीति से प्रभावित कनाडा के प्रस्ताव की निंदा की और ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में पेश किए गए इस प्रस्ताव का विरोध किया। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी रविश जैदी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीसरी समिति ने ईरान में मानवाधिकारों पर एक नए प्रस्ताव को ऐसी हालत में मंजूरी दी है कि जब इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या विरोध में मतदान करने वालों और अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की तुलना में कम थी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ कनाडा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीसरी समिति ने मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 80 देशों ने वोट डाले जबकि 29 देशों ने विरोध में वोट डाले और मतदान के समय 65 देश अनुपस्थित थे। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि दुनिया के 94 देश इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। इस प्रस्ताव का मुख्य फोकस ईरान में पिछले साल हुए दंगे थे और इसमें दावा किया गया था कि ईरान में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा कनाडा के बारे में है जो हर साल ईरान के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश करता है। कनाडा एक ऐसा देश है जिसका मानवाधिकार के क्षेत्र में काला रिकॉर्ड रहा है। ईरान के मानवाधिकार मुख्यालय ने कनाडा की इस कार्रवाई के जवाब में एक बयान जारी किया और कहा कि 2021 में कनाडा में 34,200 से अधिक बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाती है। यही नहीं, कनाडा की जेलों में लगभग 50% महिलाएं स्थानीय महिलाएं हैं जो काल कोठरियों में अधिक समय बिताती हैं और रिहाई के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करती हैं। कनाडा की 27.3% बेघर आबादी महिलाओं की है जबकि हर रात 6,000 महिलाएं जिनमें ज्यादातर बच्चों के साथ होती हैं आपातकालीन आश्रयों में शरण लेती हैं। 96% बेघर महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न, चोरी, अपमान और धमकियों का सामना किया है। ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीसरी समिति में कनाडा और पश्चिमी देशों की कार्रवाई ऐसी स्थिति में है कि जब दुनिया गजा की जनता, खासकर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ ज़ायोनी शासन के नरसंहार और युद्ध अपराधों को पिछले 40 दिन से अधिक समय से देख रही है। इन सब के बावजूद गजा में मानवाधिकार के संबंध में चिंताओं की कोई खबर नहीं है और अपराधी ज़ायोनी शासन को हर तरह की छूट हासिल है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के मानवाधिकार मुख्यालय के बयान में इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि दुर्भाग्य से मानवाधिकारों का पहले से कहीं अधिक राजनीतिकरण किया गया है और इस बारे में दोहरे मापदंड और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण दुनिया में फैले हुए हैं। गजा पट्टी में ज़ायोनी शासन के व्यापक अपराध, जो एक तरफ मानवता के विरुद्ध अपराधों, युद्ध अपराधों, नरसंहार और नस्लीय व जातीय सफाई की निशानी है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकारों के मुद्दे पर चयनात्मक और पक्षपातपूर्ण नीतियों का मुंह बोलता सबूत है।
और अब रुख करते हैं ईरान और तुर्कमेनिस्तान के संबंधों के विषय की ओर। ईरान ایران اور ترکمنستان نے سمبندوں کے وستار پر بل دیا ہے. ریل پارگمن اور پریوہن، سیما بازار، دونوں دیشوں کے بیچ گیس اور بجلی کا استھانانترن، ویاپار اور نویش، بینکنگ اور وتیہ مدے ان مدوں میں شامل ہیں جو ایران اور ترکمنستان کے آرتھک سہیوگ کے لیے 17ویں سنیکت آیوگ کے ایجنڈے میں ہیں. ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی.
ایران اور ترکمنستان کا 17ویں سنیکت آرتھک سہیوگ آیوگ 17 نومبر کو اشکا آباد میں آیوجت ہوا جو 18 تک چلے گا. اسلامی گڑتنت ایران کے سڑک اور شہری وکاس منتری مہرداد بزرپاش نے دیش کے کارکاری نکایوں کے پرتندھیوں کے ساتھ ایران اور ترکمنستان کے بیچ آرتھک سہیوگ کے سنیکت آیوگ کی بیٹھک میں بھاگ لیا. دونوں دیشوں کا 16ویں سنیکت آرتھک آیوگ 2 سال پہلے تہران میں آیوجت کیا گیا تھا. ریل پارگمن اور پریوہن، سیما بازار، دونوں دیشوں کے بیچ گیس اور بجلی کا استھانانترن، ویاپار تتھا نویش، بینکنگ اور وتیہ مدے ان مدوں میں سے ہیں جو ایران اور ترکمنستان کے آرتھک سہیوگ کے لیے 17ویں سنیکت آیوگ کے ایجنڈے میں شامل ہیں. ترکمنستان مدھیہ ایشیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کی زمینی سیما ایران سے ملتی ہے. ایران اور ترکمنستان کے بیچ 4 زمینی سیمائیں ملتی ہیں جو لگ بھگ 900 کلومیٹر لمبی ہیں، جبکہ دونوں دیشوں کے بیچ 300 کلومیٹر لمبی سمندری سیمائیں بھی ہیں. ایک اور مدھیہ ایشیائی دیشوں کو فارس کی کھاڑی اور یورپ کے پانیوں سے جوڑنے والے پرویش دوار کے روپ میں ایران کی بھوگولک استھتی، اور دوسری اور مدھیہ ایشیائی دیشوں اور چین کے پرویش دوار کے روپ میں ترکمنستان کی پوزیشن دونوں دیشوں کے وشیش اور رڑنیتک استھان کو بتاتی ہیں. ترکمنستان کی آزادی کے بعد سے ہی ایران اور ترکمنستان کے سمبندھ میتری پورن رہے ہیں. ان سمبندھوں کو کچھ سال پہلے ہی ایران پر لگائے گئے پرتبندھوں تتھا گیس کے بقائے کی وجہ سے چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے باوجود ایران کی ورتمان سرکار کے ستہ میں آنے کے بعد سے ایران اور ترکمنستان کے بیچ وبھن راجنیتک اور وانجیک کھیتروں میں کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر ہو چکے ہیں. پچھلے ورش ایران اور ترکمنستان کے بیچ ویاپار لگ بھگ 490 ملین ڈالر کا تھا، جس میں 460 ملین ڈالر ایران کا نریات تھا اور لگ بھگ 29 ملین ڈالر ترکمنستان سے آیات تھا. تہران کا کہنا ہے کہ اس کا ارادہ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار کو 3 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہے. پچھلے ورش اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے ترکمنستان کے راشٹرپتی سردار بردی محمدوف اور ان کے ساتھ آئے پرتنیدھی منڈل کے ساتھ ملاقات کے دوران سنیکت سہیوگ آیوگ کو سکری کرنے کی آوشکتا پر بل دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی گڑتنت ایران کی سرکار کی نیتی پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبندھوں کو وستار کرنے پر آدھارت ہے. اسپشٹ سی بات ہے کہ سانسکرتک اور دھارمک سمانتائیں، لمبی سیمائیں اور آرتھک شمتاؤں کی وجہ سے ایران اور ترکمنستان کے بیچ دیرگ کالک سہیوگ کا آدھار بنا ہے. اسلامی گڑتنت ایران اور ترکمنستان کے بیچ آرتھک سہیوگ پر 17ویں سنیکت آیوگ کے آیوجن سے دونوں پکشوں کے آرتھک سمبندھوں کو نئی دشا ملنے کی آشا کی جا رہی ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा.
भारत नियंत्रित कश्मीर में ताजा झड़पों में कई अलगाववादी छापामार मारे गए हैं। और भी अन्य विषयों के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
दक्षिणी कश्मीर के कोलगाम के एक निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं जो स्थानीय थे। पुलिस ने इस हवाले से जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस क्षेत्र में अलगाववादी छापामारों का एक जत्था छुपा बैठा था, जिसकी सूचना पाते ही सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान आरम्भ किया, जिसके बीच घेरे में आए इन अलगाववादी छापामारों से कहा गया कि वो आत्मसमर्पण करें, परंतु उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसका उत्तर सुरक्षा बलों ने भी दिया। इस तरह एक मुठभेड़ आरंभ हुई जो काफी समय तक जारी रही। इस मुठभेड़ में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने कहा है कि वो अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ उन्होंने जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया है उस पर वो आज भी कारबंद है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद मुक्त देखना चाहते हैं और इस हवाले से लोगों का उनका समर्थन काबिले दीद है। सुरक्षा बलों ने कहा कि जिस तरह से लोग उनकी सहायता कर रहे हैं उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं और जो भी शांति में बाधा डालने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध जबरदस्त एक्शन की जाएगी। इस बीच वक्फ की अध्यक्षा दरक्षा इदराबी ने श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो तमीर तरक्की के योजनाएं लाई हैं उससे जम्मू कश्मीर को काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद से जूझ रही थी लिहाजा इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जो स्थिति में सुधार आया है वो देखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि अब वो लोग भी इसकी प्रशासना करते हैं जो कभी उनका समर्थन किया करते थे। उनका सीधा इशारा विपक्षी दलों की ओर था। इस अवसर पर दरक्षा इंद्राबी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
पिछले 30-35 साल से हमें ये यहाँ पे सिर्फ नौजवानों के हाथों में गन था, उससे हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई। और जब गन अब धीरे धीरे गन कल्चर खत्म हो गया तो हमारे सामने अब ड्रग आ गया। हालांकि ये पहले ही हमारे रूट्स में आ चुका था लेकिन हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम यही आए दिन देखते थे कि हमारे बच्चों के हाथों में कंकर है, पत्थर है, वो पथराव करते हैं। तो हमारे लोग उसी में रहते थे कि ये पथराव कर रहे हैं और जहाद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के और हमारे लोगों ने, हमारे जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स खुद को कहते हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों के रगों में जो नशे की लत डाली है उससे न वो घर के रहे न वो घाट के रहे।
सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है पर आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, सदा की भांति आपके कुछ पत्र, ईमेल और कमेंट्स कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे
और हम आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे और कार्यक्रम पत्र संसार सुन रहे होंगे। तो दीदी हमेशा शुरू करती हैं ईमेल से, आज भी ईमेल से ही शुरुआत होगी। जी
जी। तो ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से तुर्केश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई, रविशंकर कंवर से और सूरज कुमार ढाक से, और नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, बेबी कनक और भावना वर्मा लिखते हैं कि आदरणीय दीदी मरियम एरदा दी जी को प्यार भरा नमस्कार और साथ ही दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां। और इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं
जी।
जगमग जले ये सुंदर दीप, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो, मेरी है यही दुआ इस दिवाली पर, होठों पर आपके बस हंसी ही हंसी हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश नागनपुरे जी और सारे श्रोतागण, हमारा जो समूह पूरा समूह रहता है
जी जी, नागनपुरे जी के साथ जी।
तो सबका अभिवादन है, सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्र संसार में। पंक्तियां आपने लिखी हैं, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। आपने इशारा किया है दिवाली की तरफ। दीपावली दीदी एक अच्छा त्यौहार है भारत का, और भारत की जो दुनिया में पहचान है उसमें जो चीज़ें ख़ास तौर पे लोगों के ध्यान में रहती हैं और जिसको रेखांकित करते हैं, उद्धृत करते हैं, उनमें एक ये दीपावली भी है। विदेशों में लोग जिन चीज़ों को याद करते हैं उनमें से एक ये है। बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा त्यौहार है, बहुत ही मोहब्बत भरा त्यौहार है, और इसके कई आयाम हैं। बड़ी बस्तियों में, गांवों में, शहरों में, हर जगह ही एक अलग तरह का माहौल होता है, और वाकई इसका रोल बड़ा अच्छा होता है, भूमिका बड़ी अच्छी होती है लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में
जी। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें बधाइयां भेजी हैं दीपावली की
जी।
तो नाम पढ़ देती हूँ मैं इन लोगों का। प्रेरणा कुथवाल, राजेश अग्रवाल, सुरेश शर्मा, रजनीश कुमार, हेमंत कुमार, राजू बापू, उदयभान ठाकरे, इन सभी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी।
हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम पत्र संसार में, और हमारी तरफ से भी बधाई है सारे श्रोताओं को इस अच्छे अवसर की और इस अच्छे पर्व की। और श्रोताओं, अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की। देखते हैं कि दीदी ने इस सप्ताह के लिए क्या खबर चुनी है।
जी जी, आज हम फिल्म महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं
जी।
40वां तेहरान अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा के साथ संपन्न हुआ है
जी।
समापन समारोह में ईरान के संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्री मोहम्मद मेदी इस्माइली और कई सिनेमा हस्तियों ने भाग लिया
जी।
ट्रुथ सीकर्स अवार्ड डॉक्यूमेंट्री गोले गुलाब के लिए एक अफगान निर्देशक को दिया गया। नसीम सोहेली द सिल्क रोड पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक पुरस्कार का दावा एक चीनी प्रतियोगी ने किया था। एक फ्रांसीसी निर्देशक ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का पुरस्कार एक इतावली निर्देशक ने जीता। ग्रैंड प्रिक्स हसन हिकमत रवेश ने सुरक्षित किया है ये जो पुरस्कार इन्होंने जीता है
जी, जी।
इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार तेहरान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ईरान में लगातार 40 वर्षों से ईरानी यूथ सिनेमा सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो ईरान और दुनिया भर में सिनेमा और लघु फिल्म निर्माण के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक है। देश भर में 80 से अधिक शाखाओं और 250,000 स्नातकों के परिवार के साथ ईरानी यूथ सिनेमा सोसाइटी उत्कृष्ट शैक्षिक और प्रभावी फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों से गुजरी है। हर साल सैकड़ों लघु फिल्में बनाती है और प्रतिष्ठित और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से पिछले 4 दशकों से सैकड़ों पुरस्कार जीतती आई है।
जी श्रोता, आपने संस्कृति से जुड़ी एक अच्छी रोचक खबर सुनी, और अब बारी है कमेंट्स की। देखते हैं दीदी ने कौन से कमेंट्स चुने हैं
जी। दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा आ चुका है रईसी। इस पर मनोचर लिखते हैं, आईआर ईरान आसानी से अमेरिका से अधिक शक्तिशाली लोगों को संभाल सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो उच्च तकनीक वाले उन्नत हथियारों के साथ फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं करता।
ये महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी ओर इशारा राष्ट्रपति रईसी ने किया, और उस पर जो कमेंट है, कमेंट की बात यह है कि ये कि ईरान इसको क्यों नहीं संभाल सकता
जी।
तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दुनिया में इस तरह के जब हालात होते हैं उसके कुछ नियम रहते हैं और उन नियमों का पालन कुछ देश करते हैं कुछ नहीं करते हैं। रह गया ये कि ईरान ये क्यों नहीं कर रहा है, तो हमको ये देखना होगा कि इस वक्त फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी जो भी कर रहे हैं वो ईरान की मदद, ईरान के सहयोग और ईरान की ओर से उपलब्ध कराई गई तकनीक और रक्षा संसाधनों के ज़रिए कर रहे हैं। ईरान का उसमें बहुत बड़ा रोल है, ये फिलिस्तीनी भी कहते हैं और सारी दुनिया जानती है। और ये लड़ाई जो इस समय हो रही है ये लड़ाई बहुत लंबी है। इसराइल का अगर आप इतिहास देखें तो इसराइल 1948 में इसका कब्ज़ा शुरू हुआ, बल्कि और पहले से शुरू हुआ था, लेकिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उसके प्रस्ताव के बाद से, प्रस्ताव नंबर 181 से इसका विस्तार हुआ और स्थापना हुई और शुरू हुआ और धीरे धीरे फैलता फैलता यहाँ तक फैल गया कि 78% हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में चला गया, सिर्फ 22% हिस्सा बचा जिसमें वेस्ट बैंक और गज़ा है, उसमें से भी बहुत से इलाकों को इसराइल ने कब्ज़े में कर लिया। तो ये धीरे धीरे फैला है, इसको इसी तरह धीरे धीरे ख़त्म होना है। इसराइल तो ये मान के चल रहा था कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो प्रतिरोध इस समय फिलिस्तीनियों की तरफ से हो रहा है और चल रहा है और बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं और बदलते जा रहे हैं, वो सब कुछ फिलिस्तीनियों के संघर्ष की वजह से है, उनके प्रतिरोध की वजह से, और उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। ईरान लंबी लड़ाई खुद भी लड़ चुका है और फिलिस्तीनियों को भी उसने सक्षम बनाया है कि वो लंबी लड़ाई लड़ें और निश्चित रूप से वो इस लड़ाई को जीतेंगे
जी। हथियार देने में जितनी तेजी करते हैं उतनी ही जल्दबाजी युद्ध विराम के लिए क्यों नहीं करते अमेरिका और यूरोपीय देश? इस लेख पर एस बालू लिखते हैं, इस नरसंहार शासन को बनाने के लिए पश्चिमी दुनिया, मानवता के विरुद्ध अपराध की कीमत इसको चुकानी ही पड़ेगी।
इसराइल की स्थापना के रूप में दरहकीकत एक भयानक अपराध है और एक भयानक हमला किया गया पूरे इस्लामी जगत पर और पूरे पश्चिमी एशिया के इलाके पर। अमेरिका ने, पश्चिमी ताकतों ने इस इलाके में अपना एक अड्डा बनाया और एक छावनी एक तरह से बनाई। तो इसराइल कोई देश नहीं, एक छावनी है जहां पर ताकत ले आके जमा की गई है क्षेत्र को तनावग्रस्त रखने के लिए और विवाद पैदा करने के लिए। अब इसकी स्थापना हुई है, इसको ख़त्म करना यहाँ स्थानीय लोगों का काम है, उनकी जिम्मेदारी है और वो ये काम कर रहे हैं। बेशक बहुत सी सरकारें हैं जो इसमें साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, उनको शायद इन सरकारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है और संघर्ष इनका जारी है। सफलताएं इन्हें मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। श्रोताओ, अब बारी है आपके विचार सुनने की, तो दीदी ने किस श्रोता का चयन किया है ऐलान करेंगी
जी। ये है हमारे श्रोता दिलशाद हुसैन और ये कहाँ से है वो खुद बताएंगे
जी। बहुत अच्छी बात है।
मैं दिलशाद हुसैन ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं रेडियो तेहरान का ये कहूँ कि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ तो ठीक नहीं होगा, आप लोग तो जानते हैं। वैसे तो मैं उर्दू सर्विस का लिसनर हूँ, फिर भी हिंदी सुनता हूँ, वही कार्यक्रम तो हमको हिंदी में सुनने को मिलते हैं। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी सेवा में कोई कमी नहीं, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, शिक्षा प्रद, प्रेरणादायक, हृदय परसी हमें लगता है। हमें अपने दीन के बारे में बहुत मालूम हमको रेडियो तेहरान से मिलती है, जो हम नहीं, कुछ ऐसी जानकारी हमको मिलती है जो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम रेडियो तेहरान को बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बस हमारी एक ही परेशानी है, हम तो रेडियो सुनते हैं, नेट से सुनते नहीं हैं। मध्य परिवार के हैं, रेडियो ही सुनते हैं। कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो ये मोबाइल में नहीं सुन पाते
जी। श्रोताओं, तो फिर ये हमारे थे श्रोता दिलशाद हुसैन साहब। दीदी, कुछ समस्याओं का जिक्र किया दिलशाद हुसैन साहब ने, इन पे आप इसको फॉलोअप करेंगे
जी।
तो मेरे पास थोड़ा सा समय बच गया है, आप
जी,
एक
तो एक कमेंट शामिल करते हैं
जी।
मैक्रन ने की गजा में अत्याचारों को रुकवाने की मांग, इस पर सज्जादी लिखते हैं, ईरान की इस्लामी सभ्यता और फ्रांस की सभ्यता में बहुत अंतर है। ईरान मानवता की परवाह करता है, जबकि फ्रांसीसी दूसरों की कीमत पर पहले अपने लाभ के बारे में सोचते हैं।
फ्रांसीसियों का इतिहास इस मामले में इतना भयानक और अत्याचारों से और हमलों से और दूसरों के इलाकों पर कब्ज़ों की पूरी एक घटनाओं से भरा हुआ है कि अगर देखा जाए तो इस समय भी आपको अफ्रीका के कुछ देशों में मिल जाएगा कि फ्रांस ने अभी भी वहाँ अपना वर्चस्व ख़त्म नहीं किया है। हालांकि उन देशों से फ्रांस को अब खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो फ्रांस का इतिहास इस मामले में बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है। जिन देशों पर फ्रांस का कब्जा रहा है वहाँ पर फ्रांसीसियों ने जो अत्याचार किए हैं वो बेहद भयानक हैं। अल्जीरिया इनमें से एक बड़ी अहम मिसाल है। अल्जीरिया जो उत्तरी अफ्रीका का देश है वो इस मामले में बहुत अहम मिसाल है कि फ्रांस ने किस तरह से इस इलाके में बेहद भयानक अत्याचार किए वहाँ के स्थानीय लोगों पर। और फ्रांस अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति पर आज भी चल रहा है। ये अलग बात है कि अब उसके पास वो पहले जैसी ताकत नहीं है, तो वो बहुत सी दफ़ा कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन शायद उनकी सोच आज भी वही साम्राज्यवादी सोच है
जी। और यही इन दोनों में फ़र्क है कि इस्लामी सभ्यता, ईरान की इस्लामी सभ्यता और फ्रांस की सभ्यता में
जी।
हमारे पास अब समय तो बिल्कुल ख़त्म हो गया
जी, बिल्कुल दीदी।
तो एक
एड्रेस
बता देते हैं, हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi।
तो श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम पत्र संसार यहीं पर समाप्त होता है। अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, पेश है अब सभा का अंतिम कार्यक्रम।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर नामक कार्यक्रम की कन्नी कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ईरान और दुनिया में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी के शोधकर्ताओं ने अल्बर्टा विश्वविद्यालय के डॉक्टर मेहदी तवक्कुली के साथ मिलकर रोबोटिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में एक रोबोटिक हार्ट सर्जन के सहायक को विकसित किया है। इस फैकल्टी के प्रमुख के मुताबिक ये रोबोट दिल की धड़कन के साथ साथ चल सकता है ताकि सर्जन को सही तरीके से सर्जरी करने में मदद मिल सके और सर्जन के लिए फोटोज को देखना आसान हो।
इसीलिए सर्जन सटीक और नाजुक सर्जरी करने के लिए जॉयस्टिक हैंडल का उपयोग करके रोबोट को दूर से नियंत्रित कर सकता है। मरम्मत सर्जरी में रक्त को हृदय से निकाला जाना चाहिए और दूसरे उपकरण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जो हृदय का काम करता है। इस तरह की हरकत से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए यह रोबोट दिल की धड़कन के साथ साथ चलता है।
जॉयस्टिक कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है जिसके द्वारा कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रित किया जाता है। जॉयस्टिक को डी टाइप उपकरण के नाम से भी जाना जाता है।
जॉयस्टिक के नीचे एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिससे इसमें मूवमेंट होता है। इसी पोटेंशियोमीटर के कारण ही स्टिक वापस अपनी जगह पर आती है। जॉयस्टिक को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जॉयस्टिक की खास बात यह है कि इससे कंप्यूटर में गेम खेलने में आसानी होती है।
दोस्तों, इस परियोजना के एक अन्य शोधकर्ता के अनुसार यह सहायक रोबोट दिल की सभी हरकतों की नकल कर सकता है और दिल के साथ आगे पीछे हो सकता है यानी धड़क सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल हार्ट सर्जरी के अलावा छाती और पेट की सर्जरी में भी किया जा सकता है। ये उपकरण दो संस्करणों में बना है। पुराना संस्करण बड़ा है और नया संस्करण छोटा है।
प्रत्येक रोबोट के पास कार्रवाई की 5 डिग्री तक की स्वतंत्रता होती है और दो रोबोटिक भुजाओं में एक साथ 10 डिग्री तक की कार्रवाई की स्वतंत्रता हो सकती है। इस उपकरण ने अपने अनुसंधान चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और क्लिनिक चरण में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस शोध कार्य के बारे में अब तक 30 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
जून 2019 में प्रकाशित JCR यानी जर्नल साइंटिशन रिपोर्ट के 2018 के संस्करण के आधार पर ईरान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इरानडेक की घोषणा के अनुसार 36 ईरानी प्रकाशनों को इम्पैक्ट फैक्टर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस शोध संस्थान की घोषणा के अनुसार पहली तिमाही में 2 प्रकाशन, दूसरी तिमाही में 2 प्रकाशन और तीसरी तिमाही में 10 प्रकाशन तथा चौथी तिमाही में 23 प्रकाशन इस डेटाबेस में अनुक्रमित प्रकाशनों की एक सूची में शामिल हैं।
यह रिपोर्ट इशारा करती है कि एक प्रकाशन को 2 विषय क्षेत्रों में और 2 अलग अलग चतुर्भुजों में वर्गीकृत किया जा सकता है और उदाहरण के लिए इरानियन जनरल ऑफ अजी सिस्टम को 2रे चतुर्थांश में और गणित में 1रे चतुर्थांश में लागू वर्गीकृत किया गया है। सामान्य तौर पर GCR में अनुक्रमित ईरानी प्रकाशनों का औसत इम्पैक्ट फैक्टर और आर और माध्यमिक है। GCR की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इस डेटाबेस के 2018 संस्करण में 11,822 प्रकाशनों का इम्पैक्ट फैक्टर रहा है। इसके साथ ही ईरानी मैथ ओलंपियाड टीम ने इंग्लैंड में आयोजित 60वें विश्व मैथ ओलंपियाड में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।
दोस्तों, पहली बार मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक तेल बहुलक संयोजन के साथ एक तरल चुंबक विकसित किया है जो अपना रूप बदलने के बाद अपने चुंबकीय गुणों को बरकरार रखता है। तरल रोबोट के विकास में ये दिलचस्प विशेषता बहुत कुशल है। इन शोधकर्ताओं ने पैरा मैग्नेटिक फ्लोरोफ्लुइड सामग्री या तैरने वाले धातु के कणों को स्थायी मैग्नेट में बदलने के लिए एक विधि विकसित करने में 7 साल का समय लगाया।
ठोस चुंबकों को आमतौर पर फेरा मैग्नेटिक कहा जाता है। जब उन्हें एक चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध रखा जाता है तो चुंबकों के इलेक्ट्रॉन संरेखित होते हैं और उसी पथ पर बने रहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सामग्री को बहुत महीन कणों में बनाया जा सकता है और तरल में निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार फेरोफ्लुइड सामग्री बनाई जाती है।
चुंबकीय गुणों के आधार पर सामग्रियों को 5 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। डायनामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरो मैग्नेटिक। मुख्य अंतर डायना मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक सामग्री के बीच पाया जाता है। डायनो मैग्नेटिक मटेरियल बाहरी मैग्नेटिकल फील्ड की ओर आकर्षित नहीं होते और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं।
सामग्री वे सामग्री है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सामग्रियों में मौजूद परमाणुओं या आयनों में अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा डायमैग्नेटिक सामग्रियों को पीछे हटा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सामग्रियों में एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बनाया जाता है। यह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एक प्रतिकारक बल के निर्माण का कारण बनता है। डायमैग्नेटिज्म उन सामग्रियों में देखा जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना की समरूपता होती है और कोई स्थायी चुंबकीय क्षण नहीं होता है, और यह भी डायमैग्नेटिज्म तापमान पर निर्भर नहीं है।
पैरा मैग्नेटिक सामग्री ऐसी सामग्री है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होती है, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इन सामग्रियों में मौजूद परमाणुओं या आयनों में अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आकर्षण पैदा कर सकते हैं।
फेरोमैग्नेटिक सामग्री ऐसी सामग्री है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में दृढ़ता से आकर्षित होती है। इस प्रकार की सामग्रियों में धातु के परमाणु या धातु आयनों में अधिक अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस प्रकार की सामग्री बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है तो वे चुंबकीय रूप से प्रेरित हो जाते हैं और छोटे चुंबकों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। औद्योगिक पैमाने में फेरोमैग्नेटिक सामग्रियों को कम तीव्रता वाले चुंबकीय विभाजकों का उपयोग करके अन्य सामग्रियों से अलग किया जाता है जो 0.04 टेस्ला के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं।
दोस्तों, वर्तमान समय में फेरो फ्लूइड्स के विभिन्न उपयोग हैं, जिनमें से एक स्पीकर को ठंडा करने में मदद करना है। सामान्य तौर पर शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि फेरो फ्लूइड के नैनोकणों को एक दूसरे से काफ़ी करीब लाया जाए तो वे स्थायी रूप से चिपके रहेंगे। विशेष रूप से उनके प्रयोग में कणों के बीच की दूरी 8 nm यानी नैनोमीटर होती है। ये तरल के बाहर एक परत बनाता है जो ठोस चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस उद्देश्य के लिए इन शोधकर्ताओं ने एक विशेष तेल बहुलक संयोजन का उपयोग किया। साथ ही इन शोधकर्ताओं ने देखा कि छोटी छोटी बूंदों में तब्दील होने के बाद भी अपने चुंबकीय गुणों को ये बरकरार रखती हैं।
बीजिंग में शेनहुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक ऐसा गैजेट विकसित किया है जो गोंद के साथ एक व्यक्ति के गले में चिपक जाता है और एक आर्म बैंड से जुड़ा होता है। यह गैजेट उन लोगों को म्यूट करने में मदद करता है जो वे चाहते हैं कि वे जोर से बोलें।
बेशक इस डिवाइस को लंबे समय तक इस्तेमाल करना कष्टप्रद है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि डिवाइस को अपग्रेड करके इसे एक पतले और लचीले गैजेट में बदलकर इसे गीला करके किसी व्यक्ति के गले से जोड़ा जा सकता है। ये डिवाइस पहनने योग्य सिंथेटिक ग्राफीन गला यानी ग्राफीन से बना है, जिसे पॉलीविनाइल अल्कोहल फिल्म की पतली शीट पर लगाया जाता है। अपनी वर्तमान स्थिति में इस उपकरण का आयाम 15x30 mm के बराबर है और ये एक तार के साथ एक आर्म बैंड से जुड़ा है, जिसमें एक सर्किट बोर्ड, एक माइक्रो कंप्यूटर और एक डिकोडर होता है।
इस उपकरण का उपयोगकर्ता एक शब्द बोले बिना मुखर डोरियों और स्वर यंत्र के साथ कुछ आवाजों और गतिविधियों का अनुकरण करता है। गैजेट इन आवाजों और गतिविधियों को त्वचा पर ट्रैक करता है और उन्हें डिकोड करके वांछित शब्द की पहचान करता है। अगले चरण में आर्म बैंड कंप्यूटरीकृत आवाज के साथ वांछित शब्द कहता है। अभी तक इस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ हेलो और ओके या नो जैसे साधारण शब्दों की पहचान के लिए किया जाता था। इस शोध के नतीजे ASC नैनो जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर। अबू तुराबी फर्द ने ज़ायोनी शासन को संकट पैदा करने वाला बताया है। जनरल इस्माइल कनानी ने कहा है कि हमास ने अलक्सा ऑपरेशन अंजाम देकर बड़ा कारनामा किया है। गजा में इंडोनेशियाई अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अलशिफा अस्पताल में सुरंग का कोई भी सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर देख सकते हैं, partstoday.ir/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा आप यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔